તારીખ 27/4/1997 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 949 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 584
વલસાડથી લખેલો પત્ર છે. આમાં ફેર માટે આવ્યા છે. શ્રી જુદી જુદી જગ્યાએ રહ્યા હતા. વઢવાણ સુરેન્દ્રનગરમાં અમુક ટાઈમ રહ્યા હતા. છેલ્લી ત્રણ લીટીમાં મુખ્ય વાત છે. બાકી તો ભાઈ મનસુખના પત્ની સ્વર્ગવાસ થયાના ખબર જાણી આપે દિલાસા ભરિત કાગળ લખ્યો તે મળ્યો છે. કોના ઉપર મનસુખલાલ કિરતચંદ છે. અહીંથી લખ્યું સારવારનો પ્રસંગ લખતા આપણે જે વચનો લખ્યા છે તે યથાર્થ છે. સારવાર એટલે કૃપાળુ એમની તબિયત નરમ ગરમ રહેતી હતી એ માટે કોઈ વાત લખી હશે. શુદ્ધ અંતઃકરણ પર અસર થવાથી નીકળેલા વાક્ય છે. અંદરથી આ લાગણીથી લખ્યું હશે. પછી પોતે યોગ્યતા જોઈને લખનારની યોગ્યતા જોઈને બે વચનો લખ્યા છે. લોકસંગના જેની જિંદગીનો ધ્રુમ કાંટો છે તે જિંદગી ગમે તેવી શ્રીમંતતા સત્તા કે કુટુંબ પરિવાર આદિ યોગવાળી હોય તો પણ તે દુઃખનો જ હેતુ છે. બહુ પ્રચલિત વચનામૃત છે આ. કૃપાલ દેવનું હિન્દી મળેંગે આપણે. લોકસંગના જિસકી જિંદગી કા ધ્યેય હૈ ધ્રુવ કાંટા મેને ક્યા ધ્રુવ કાંટા કભી દિશા નહીં બદલતા. ધ્રુવ કાંટા દેખા યંત્ર આતા હૈ ધ્રુવ કાંટા કા. નોર્થ મે જો ધ્રુવ પોલ હૈ ઉસકી ઓર હી હમેશા રહેતા હૈ. કહીં ભી ઘુમાઓ કહીં ભી લે જાઓ વો નોર્થ ડિરેક્શન બતા દેગા. તો જિસકે પરિણમન કા વલણ લોકસંગના કી ઓર રહેતા હૈ. સમાજ મે જાયેગા તો વહા તો સામાજિક બાત હૈ તો વહા તો લોકો કી મુખ્યતા રહેગી. ઘર મે રહેગા તો ઘર મે ભી ઇસ પદ્ધતિ સે રહેગા ઘર મે કે લોકો કો ક્યા લગેગા. અપને ઘર લોગ આયેંગે તો કૈસા દિખેગા અપના ઘર. કપડા પહેનેંગે તો લોગ કૈસે દેખેંગે. વહા તક કે ધર્મ કે ક્ષેત્ર મેં જાયેગા તો ભી લોક કૈસે અપને કો ગિનેગા. દાન દેંગે તો લોગ અપની ઇજ્જત કરેંગે. ક્રિયા પાલેંગે તો ભી અપની ઇજ્જત બઢેગી. શાસ્ત્ર જ્ઞાન બઢેગા તો ભી લોગો કો અપના ઓર મૂલ્ય બઢેગા. લોગો મેં હર જગે ઘર મે મંદિર મે સમાજ મે કહીં ભી જાયેગા પરિણમન કા વલણ કા ધ્રુવ કાંટા સમાજ કી ઓર રહેગા લોગો કી ઓર રહેગા. એસે જીવન જીને વાલે કો કિતની ભી શ્રીમંતાઈ હો કિતને ભી પૈસે વાલા હો દુઃખ કા કારણ હોયેગા. ક્યા આકુલતા બની રહેગી. ક્યું કે ઇસ હુંડાવ સર્પિણી કાલ મેં ચતુર્થ કાલ હોવે તો ભી પંચમ કાલ હે અભી તો હુંડાવ સર્પિણી કાલ મેં कोई एक किसी मनुष्य का पूरा पूरा लोग, पूरी समाज, पूरे लोग उसकी प्रशंसा करे ऐसा नहीं बनता। कोई प्रशंसा करेगा, कोई निंदा करेगा। एक व्यक्ति का एक अभिप्राय इस काल में होने वाला नहीं है। समस्त दृष्टांत तो ऋषभदेव स्वामी का है, जो चतुर्थ आरा के प्रारंभ में हुए थे। सतयुग का प्रारंभ था, बहुत अच्छा काल था। चतुर्थ आरा में भी जैसे जैसे समय निकलता गया कालहीन होता गया। प्रारंभ में सबसे अच्छा था, तो भी इसकी बुराई करने वाले इनके ही पौत्र थे। आगे नहीं जाना पड़ा समाज में, इनके परिवार वाले उनकी बुराई करते थे। कितना पुण्य लेकर आए थे, तीर्थंकर प्रकृति का उदय था उस वक्त, मैंने सर्वोत्कृष्ट पुण्य का उदय था। उस वक्त भी उनकी बुराई होते थे, गालियां देते थे। तो वो तो दुखी होने वाला है जिसको ये करे, मेरी तो इज्जत ऐसा करता है, मेरी इज्जत ऐसा करता है, ये तो मेरी इज्जत बिगाड़ता है, दुखी होगा। मेरी ऐसी इज्जत की कल्पना बनी रहती है जिनको, हाथ में क्या आता है? आपने मेरी प्रशंसा कर दी, मेरे हाथ में क्या आया, क्या मिला मुझे? लोग तो वैसे प्रशंसा कराते ना, आप मेरी प्रशंसा करोगे मैं इतना दान दूंगा। ये हमारे दिगंबरों में तो बहुत हो गया है। मंदिर जी में एक चौकी देगा तो नाम लिखेगा, फलानी फलानी भाई ने चौकी दे दिया। एक सीढ़ी मरामत करा दिया तो कोई फलाना फलाना ने ये करा दिया। हमारे शास्त्र में मान पर उतना निषेध किया है कि बहुत बड़ा पाप है। हमारे यहाँ उतना चलता है, ये हमने दो जगह देखा, दो संप्रदाय और देखा। एक ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाला और ये निरंकारी सिखों का, करोड़ों रुपयों का खर्च होता है, कहीं किसी का नाम नहीं है कि एक करोड़ इसने दिया या एक रुपया उसने दिया। कितना खर्च करते हैं, करोड़ों का खर्च होता है, एक जगह किसी का नाम कटती नहीं लगती है। जिसको भी पैसा डालना हो एक भंडारा में डाल दे, एक भंडार में डाल दे, कोई नाम नहीं किसी का। जहाँ उतना तत्वज्ञान नहीं है, जहाँ उतनी निर्दोषता नहीं है, जहाँ मोक्ष का मार्ग नहीं है, वहाँ भी अभिमान से लोग दूर रहते हैं। हमारा तो एक पंखा का उस पर लग जाएगा कि पंखा उसने लगाया है, देखा साहब लगता है पंखा नहीं, देखा जो सोना गिर गया। एक एक सीढ़ी पे नाम था, अमृत शिखर में एक एक सीढ़ी पे नाम, क्या हो गया है समझ में नहीं आता है। लोग सुनना है, क्या है
लोग सुनना,
लोग जाने के हमने वो दान दिया, लोग जाने के हमने वो काम किया। पुण्य पाप का विवेक छूट जाता है, इसमें पाप होता है उतना भी खबर नहीं, धर्म तो हो गया ही नहीं। पुण्य भी नहीं होगा तो धर्म तो कहां से होगा, धर्म तो वितरा के परिणाम है। तो उनको आकुलता ही बनी रहेगी। हैदराबाद में गए थे ना निरंकारी में, किसी का नाम नहीं बोला, हमारे यहाँ किसी का नाम नहीं लेता। कोई कंडीशनल डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करते, हम इतना रुपया देंगे तो आपको ऐसा करना है, वो बात नहीं है, देना हो तो दो, मत देना हो तो मत दो। काम जो नीति से चलता है, संस्था की संप्रदाय की जो नीति रीति है उसी से चलेगा, कोई नीति रीति में फेरफार नहीं होगा। सोनपुर में तो गुरुदेव के जाने के बाद वो नाम वाम का चालू हो गया, मैं बिल्कुल नहीं,
लागत
नहीं। हमारे उपस्थिति में एक आदमी आया था, उसका जवान लड़का गुजर गया था, तो उस जमाने में 11,000 की रकम बहुत बड़ी 40 साल पहले बड़ी दिखती थी। तो बोला कि हमको ये भगवान के मंदिर है उसके दरवाजे पे एक तोरण लगाना है मोती का, क्या मोती का तोरण, सुशोभित तोरण लगाना है भगवान के मंदिर के दरवाजे पे, मेन गेट पे। लेकिन वो मोती में हम हमारे लड़के का नाम डालना रखना है, तोरण भी हमारा, उसमें उसका खर्च भी हम करेंगे और 11,000 और देंगे, लेकिन हमारा नाम मंदिर के आगे लिखा दो ना, दे दिए। कंडीशनल पैसे नहीं लेते हैं, आपको 11,000 देना हो दो, नहीं देना हो मत दो, कंडीशनल पैसे नहीं लेंगे, तो शर्ती दान नहीं स्वीकार करेंगे, वो बात है। तो एक गौरव था उस विषय का, उसमें क्या अगले को मान का पोषण होता है और दान लेने वाला उसका अनुमोदन करता है, उसकी लोक संज्ञा का परिणामों का अवलोकन अनुमोदन कर देता है, दोनों को नुकसान है, दान देने वाले को और दान लेने वाले को, दोनों को नुकसान है। लोक संज्ञा जिसकी जिंदगी का ध्रुव ध्येय है, ध्रुव कांटा मैंने ध्रुव ध्येय है, फिरता नहीं बदलता नहीं, हर जगह वही बात रहती है। यह जिंदगी चाहे जितनी श्रीमंताई वाली हो, जिंदगी को चाहे जिसकी सत्ता इनके पास हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो प्राइम मिनिस्टर हो, ये चाहे जितना कुटुंब परिवार आदि योग वाली हो, बहुत बड़ा हमारा कुटुंब, बहुत बड़ा खानदान, इतने भाई, इतने विवाही लोग, इतने सगे, इतने संबंधी संबंधी, इतने हमारे ग्रुप वाले, हमारे क्या हमारे साथ में रहने वाले, कभी भी कहीं तकलीफ हो तो सब सगा नहीं है लेकिन साथ में हो जाता है, मित्र परिवार उतने होते हैं, ठेकेदार जिसको बोलते हैं क्या, हाँ सपोर्ट करने वाले, तो चाहे जितना कुछ भी हो दुख का ही कारण है और कुछ कारण नहीं है।
निदान
तो आगे लिख चुके हैं कि लोक संज्ञा के परिणाम ये कालकूट जहर है, कैसा है कालकूट जहर है। तो ऐसा क्यों कहा, अरे आम समाज में तो ये बहुत सामान्य दिखता है कि सबको इज्जत की पड़ी है, सबको इज्जत बढ़ाना, जितनी है उतनी मेंटेन करना और उसमें बढ़ोतरी करना, तो बहुत सामान्य दिखता है जी। उसको कालकूट जहर इसलिए बताया कि वो जीव को, जीव के परिणाम को बहिर्मुख जकड़ करके रखता है। जकड़ पकड़ में क्या फर्क है, मजबूत पकड़ को जकड़ कहते हैं, और उतनी जकड़ है कि परिणाम की दिशा अंतर्मुख होने में वहां से वो मचक नहीं देगा, इसलिए उनको कालकूट जहर बोला है। क्योंकि बिचरा की जो परिणाम है वो अंतर्मुख परिणाम है और बहिर्मुख परिणाम है वो चाहे शास्त्र ज्ञान का हो तो भी भगवान ने उसका निषेध किया है, बहिर्मुख उपयोग का निषेध किया है। केवल एक अंतर्मुख उपयोग ही कर्तव्य है, इसलिए हमारे परमात्मा है वो सदैव अंतर्मुख रहते हैं, चाहे अरिहंत है सिद्ध है, निरंतर हमेशा सदा के लिए अंतर्मुख रहते हैं। और उसकी पूर्व भूमिका में जो मुनिराज है वो भी क्षण क्षण में अंतर्मुख होता हो जाया करते हैं, एक क्षण में सातवें गुण स्थान में चले जाते हैं अंतर्मुख, चलते हैं तो भी अंतर्मुख हो जाते हैं, खाते हैं तो अंतर्मुख हो जाते हैं, और इसलिए चलने में भी उनके मर्यादा हो गई है, तो नीचे देखकर चलेंगे, इधर उधर देखेंगे नहीं, क्योंकि अंतर्मुख होना है, क्षण में तो अंतर्मुख होना है उनको, नीचे देख के चलेंगे। क्रिया समिति उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिया समिति से चलते हैं, तो क्रिया समिति की मर्यादा है। तो ये बात आत्मार्थ जीव को अपने परिणामों के साथ मिलान करने के लिए है कि हमारे परिणाम कहीं लोक सम्मान इज्जत आबरू को कहां तक मुख्य करता है, और इसके लिए हम क्या क्या करते हैं। आजकल तो श्रीमंता ही इज्जत का एक बैरोमीटर हो गया है, लेकिन सर्वथा ऐसा नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री मर गए और इनके संपत्ति में कुछ निकला नहीं, नो बैंक बैलेंस। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर में हिंदुस्तान का शहंशाह हो गया था, प्राइम मिनिस्टर तो राजा हो गया, उसकी सत्ता है इसके पास, फिर भी वो मर गया, एक्सीडेंटली मर गया मॉस्को में। यहाँ देखा तो उसके परिवार में, उसके बैंक में कुछ बैलेंस नहीं था, पैसे ही नहीं था, तो क्या इसकी इज्जत कम हो गई या बढ़ गई? पैसा नहीं होने से इसकी इज्जत कम नहीं हुई थी, लोगों ने उसकी इज्जत किया, तो देखो इतनी बड़ी पदवी पर होने पर भी उसने कुछ पैसे इकट्ठे नहीं किए, चाहे तो
पैसा नहीं सब इज्जत करी है, पैसा ना निकले इसलिए इज्जत करी।
हाँ, उसकी दरिद्रता इज्जत का कारण बना है, इसकी दरिद्रता थी, ये हमारे देश के गौरव था, नेशनल प्राइड है, वो देश का गौरव है। देखो हिंदुस्तान का शहंशाह के पास कुछ नहीं है, वो भी लोगों का सच्ची सेवा करने वाला आदमी था, तो लोगों ने उसको उसका गौरव लिया। तो इसका मतलब ये है कि कोई पैसों से इज्जत मिलती है वो बात जगत में भी नहीं है, धर्म के क्षेत्र में तो है ही नहीं, जगत में भी नहीं है। बहुत आकुलता का कारण है, एक तो लोक सम्मान है, जिसको लोक सम्मान का परिणाम है उसको बहुत आकुलता होती रहती है। ज्ञानी जानते हैं कि कितनी आकुलता है, उनको मालूम हो गए नहीं हुए अलग बात है, ज्ञानी को पता चलता है कि बेचारा बहुत दुखी है,
शांति कोई है कि
हाँ, उसकी अशांति को वो देख सकते हैं, अपनी शांति का वो अनुभव करते हैं और अगले की अशांति को वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अमन कलकत्ता में गए थे ना, वो रात फॉर्मेट देखने को, कंप्यूटर देखने को, ऐसा वाला आदमी था, लेकिन उसकी जो चेष्टाएं सब थी बोलने की, रहने की, दिखाने की, आपको तो बहुत प्रसिद्ध होते थे, खुली जा रहा है, वही जा रहा है। आत्मशांति जिसकी जिंदगी का ध्रुव काटा है
जी।
क्या
आत्मशांति,
इसको आत्मशांति चाहिए बस, किसी कीमत पे, क्या किसी भी कीमत पे हमको आत्मशांति चाहिए, वही धर्म है, धर्म में आत्म शांति है और आत्म शांति है वही आत्मा का धर्म है, वही आत्म धर्म है। और सहानुभूति में आत्म शांति पैदा होती है, वही जिसकी जिंदगी का ध्रुव काटा है मैंने वही ध्येय है कि हमको कैसा भी हो आत्म शांति चाहिए। वो जिंदगी चाहे जितनी एकाकी हो, एकाकी मैंने अकेले रहने वाला हूं, इसके साथ कोई नहीं हो, कोई उसको साथ नहीं देते हो, परम शांति का स्थान है वो, परम समाधि का स्थान, उसको समाधान रहेगा, कहीं असमाधान नहीं होगा। लोग संगना वाले को समाधान नहीं होगा, इसलिए समाधान नहीं होगा कि उनके कितने भी विकल्प चलेंगे, विकल्प के अनुसार सब बात बनने वाली नहीं है। तो उनको ये होगा कि मैं सारे समाज को अनुकूल रहना चाहता हूं, फिर भी लोग आड़े टेढ़े क्यों चलते हैं? अरे क्या जिसको वो अनुकूलता देगा वो इसकी बुराई करेगा, ऐसा भी बन सकता है। तो उपकार करे और अगला अपकार करे, और जेलसी ईर्षा ये तो मानव स्वभाव है, मनुष्य की प्रकृति में ये बात होती है कि कोई भी कोई क्षेत्र में पैसों में इज्जत में किसी भी लाइन में आगे बढ़ेगा, इसकी ईर्षा करने वाला जेलसी करने वाला निकलेगा और निकलेगा ही, कोई समझ नहीं हो उसको, कोई लेना देना कुछ नहीं होगा, ईर्षा करेगा। और ईर्षा करने वाला कितना नीचे जाकर के ईर्षा करेगा इसी का कोई लिमिट हद नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ईर्षा करने वाले को कोई लिमिट नहीं होती नहीं, और किए बिना कोई रहेगा नहीं। तो लोग सुनने वाले को समाधान नहीं होगा, अरे मैं इतना लोगों की सेवा करता हूँ, इतना लोगों को दान देता हूँ, इतना मैं काम करता हूँ, इतना लोगों की भलाई करता हूँ, मेरा जीवन ही लोक सेवा के लिए, फिर भी लोग मेरी बुराई करते हैं। और बहुत समस्त दृष्टांत गांधी जी का है। गांधी जी ने पोतली पहन करके निकल गए, कपड़े कम कर दिए, उनको कोई परिग्रह नहीं चाहिए, वो भी हमारा धोती हम सूत काटेंगे उनसे पहनेंगे, खुद ही रुई खरीद करेंगे उसका सूत भी हम करेंगे, उसकी बुनाई करवाएंगे और वो धोती हम पहनेंगे, उनको दूसरे के धोती भी नहीं चाहिए, उतना निष्परिग्रह। और सारे देश की सेवा करने का जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया हो, ठेका ले लिया हो, इस तरह से निकल गए। तो उसको पिस्तौल से मारा गया, कैसे मारा? पिस्तौल चलाई गई कि नहीं चलाई गई? विश्व में बनने वाला नहीं है कि कोई सेंट परसेंट कोई प्रशंसा हो है और कोई बुरा बोले ही नहीं, ऐसा बनने वाला नहीं है, इम्पॉसिबल बात है। क्योंकि ईर्षा करने का मानवियों का स्वभाव है, कोई लेना देना नहीं है तो वो ईर्षा करेगा। दूसरों की प्रशंसा जचती नहीं, इसका क्या करे प्रकृति में? प्रकृति ऐसी टेढ़ी है, वक्र है, असरलता है। ये सहज स्वाभाविक है, मनुष्य प्रकृति के साथ जो प्रकृतिगत दोष है उसमें ये बहुत स्वाभाविक है, और है भयंकर अपराध। वो कितना गिरेगा इसका कोई हद नहीं है,
लोक में रहने का है तो प्रेमित रहना पड़ेगा, संसार में रहना है और वो संसार के प्रतिकूल जाए तो उसको बेचारा तकलीफ पड़ जाए।
संसार के अनुकूल चलने वाले की ईर्षा करते हैं, इसका क्या करोगे? इसका क्या करोगे? इसका कोई इलाज है क्या? कोई इलाज नहीं है।
कोई ज्यादा ईर्षा हो उसकी प्रसिद्धि होती है इसलिए उसके प्रति ज्यादा ईर्ष्या
हो जाती है। हाँ, ज्यादा होगी तो मेन्श्री का दृष्टांत है। मेन्श्री चार दीवार से बाहर नहीं निकलते थे, अपने कमरे से बाहर निकलते थे, बीमार हालत थे। पुण्य योग था तो प्रशंसा गुरुदेव ने भी बहुत किया और समाज भी करने लगे। तो गुरुदेव और समाज करते थे तो हमारे लोग भी ईर्ष्या में आ गए। दूसरे तो आएंगे आएंगे, हमारे लोग भी ईर्ष्या में आएंगे। वैसे हमारे लोग थे जिसने कभी मिले नहीं थे, देखे नहीं थे, वो लोग ईर्ष्या करते थे, करते थे और करते हैं भी। एक मानव स्वभाव है, एक किसी की प्रशंसा जचे ही नहीं, रुचे ही नहीं, इसका कोई इलाज है नहीं।
ऐसा भी तो बनता है हृदय में प्रशंसा पड़ी मगर बाहर नहीं बताता,
नहीं बता रहे अलग बात है, और ईर्ष्या करना अलग बात है, वो अलग बात है। टोडरमल जी साहब की तो ईर्ष्या करने का दूसरा भी कारण था। उन्होंने मोक्षमार्ग प्रकाशक लिखा, इसमें अन्य धर्म का निषेध किया, तो अन्य मतियों को ये लगा कि हमारे संप्रदाय के, हमारे भगवान की निंदा करते हैं तो उसको मार डालना सही है, मार डाले। उसमें तो एक कारण भी था, तो बिना कारण भी लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। जिसकी कोई सामाजिक प्रवृत्ति नहीं हो, जैसे बेंसर से सामाजिक प्रवृत्ति कुछ नहीं थी, अजात शत्रु जैसा जीवन था उनका, तो शत्रु जन्म ही नहीं पामे। ऐसा कोई काम नहीं था कि शत्रु जन्म पामे, फिर गड़बड़ चलती थी, समाज में ही चलती थी। तो ये जमाना ऐसा है, ये हुंडाव सर्पिणी काल है। क्या है? हुंडाव सर्पिणी काल है, उसमें धर्मात्माओं की निंदा हो गए, प्रशंसा हो गए, विरोध हो गए, विराधना हो गए। दूसरे भगवान का हुआ है, किसका बाकी रहेगा? तीर्थंकर का हुआ तो किसका बाकी रहेगा? कौन बाकी रह सकता है? तो कृपालुदेव का भी विरोध हुआ है, गुरुदेव का भी विरोध हुआ है, सबका विरोध हुआ है, हाँ उनका भी विरोध हुआ है। तो गुप्त रहे थे, लेकिन प्रशंसा हुई, इसके सामने विरोध आएगा आएगा और आएगा। तो मानो स्वभाव है।
वैसे एक महीने पहले एक वाक्य बन गया, अपने मंदिर के कंपाउंड में आपकी गाड़ी पड़ी थी, एक कोई मनुष्य था वो आया, इधर उधर देखा आपकी धुना लेकर लगे गाड़ी से, उसको इससे आई गाड़ी पड़ी है, हमने देखा।
तो जिसको आत्म शांति का ध्येय है वो तो जिंदगी चाहे अकेले जीता हो, किसी के साथ नहीं रहता हो, और बिल्कुल निर्धन हो, क्या अकेला हो, निर्धन हो, और कितना निर्धन हो, निर्वस्त्र हो, वस्त्र के भी पैसे नहीं हो, लेकिन आत्म शांति का ध्येय है वो परम समाधि का स्थान है। और इसका समर्थ दृष्टांत हमारे मुनिराज हैं। निर्वस्त्र होते हैं, निर्धन होते हैं, तो पैसा रखते हैं, इनकी चर्चा अपने को नहीं करनी। फिर यहाँ से वोढ़वान कैंप आए हैं, पूछ महीने में वलसाड़ में तिथल है, और फिर वोढ़वान कैंप आए, आखिरी में मान रहे थे, फिर राजकोट आए, राजकोट में देर छोड़ दिया। आज समाधि दिन है। समाधि दिन का मतलब क्या है? ये सामान्य मनुष्य आयुष पूरा करता है तो मरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मरण कहते हैं। ज्ञानी का देह त्याग को मरण नहीं कहते हैं। समाधि का प्रसंग है, समाधि मरण है ना, मरण को भी समाधि मरण ऐसा लगता है। और जिसका चरम शरीर होता है तीर्थंकर केवली का, उनको तो निर्वाण प्रसंग कहते हैं, उसको तो मरण शब्द समाधि मरण भी लागू नहीं पड़ता, वो तो निर्वाण में गए, क्योंकि वो सिद्धालय में पधारे। ऊपर की गति में गया, तो उसको मृत्यु और मरण नहीं कहते, समाधि दीन है। मृत्यु दीन है नहीं, समाधि दीन है। समाधि माने क्या, कि जब देह त्याग का प्रसंग आया, वेदना तो बढ़ेगी, स्वाभाविक है, प्राण छूटेगा तो वेदना तो बढ़ेगी, ये तो शरीर धर्म है। लेकिन उसी वक्त उस ज्ञानियों का, धर्मात्माओं का पुरुषार्थ तेज होता है।
जी।
क्या होता है?
तेज होता है,
पुरुषार्थ तेज होता है, एकदम पुरुषार्थ बढ़ जाता है। और किसी किसी को तो निर्विकल्प समाधि में देह त्याग होता है, इतना भी पुरुषार्थ बढ़ सकता है। और सविकल्प दशा रहे तो भी जो ज्ञान धारा है भीतर में, वो अंतरंग ज्ञान धारा एकदम आविर्भूत होती रहती है, और शांति, आत्म शांति उस वक्त बढ़ जाती है। समाधि शब्द ही आत्म शांति को बताने वाली है। समाधि शब्द में आत्म शांति बतलाना है, इसलिए वो समाधि दिन बोला जाता है। तो उपयोग बहुत सावधानी होती है, उपयोग होता है माने इसके लिए बहुत सावधान हो जाते हैं, उतने सावधान हो जाते हैं कि उस वक्त वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते। इस वक्त हमारे से कोई बात नहीं करेंगे, कोई हमको मिलेंगे नहीं, हमको किसी से मिलना नहीं है, बात करना नहीं है। संसार के लोग तो क्या करते हैं कि हमारे परिवार को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, तो ममत्व करते करते दुर्गति में चले जाते हैं। ये हालत रही संसारियों के, ज्ञानी को उल्टा है। ज्ञानी होगा कोई, गुरु में कृपा देवी थे, 33 साल की तो उम्र थी, 33 साल की उम्र मैंने जवान थे। ऐसा नहीं बोला कि हमारी पत्नी को बुलाओ, हमारे लड़के को बुलाओ, अब के परिवार में तो सब थे, किसी को नहीं बुलाया। बोला कि हमको कोई बुलाएंगे नहीं, हम हमारे समाधि में लीन हो रहे हैं, हम आत्मा में लीन हो जाएंगे, अब हम हमारे से कोई बात नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं, बस खत्म। तो मृत्यु का भी कोई भय, शोक कोई बात नहीं, और कोई परिवार की पकड़ ममत्व नहीं, उतनी पूरी तैयारी कर ली थी।
कोई धर्म संभलवा नहीं आता
जरूर पड़ता है कि जिसके परिणाम सांसारिक पदार्थ के प्रति खींचते हैं, उनके परिणाम का खींचाव तोड़ने के लिए उनको शुभ भाव में लगा लगा। तुम देवगुरु शास्त्र को याद करो, भगवान को याद करो, तुम गुरु को याद करो, लेकिन जिसके परिणाम उससे आगे हैं, जो शुभ परिणाम के स्तर से आगे ऊपर के लेवल पे चलते हैं, वितरागी परिणामों में चलते हैं, उनको शुभ भाव में ले जाने रहता हो तो नीचे ले जाने की बात होगी, वो क्यों नहीं चाहेंगे। तो उनको थोड़े कि मैं तो मेरे वितराग भाव में लीन होना चाहता हूँ, स्थिर होना चाहता हूँ, उसमें डूबे रहना चाहता हूँ, किसी को बुलाना
नहीं
है। ये सुभाष भाई ने भी ऐसा किया, सुभाष भाई ने भी ऐसा ही किया। ये सुभाष भाई का 100वां समाधि दिन आ रहा है, जेठ वद दशम आएगा, जून 29 तारीख है। तो इसमें क्या क्या गुण थे, एक तो बहुत बड़ा गुण वो था कि ज्ञानी के मार्ग पर चलने का अद्भुत निश्चय, सबसे बड़ा गुण वो था। और अपने गुरु और धर्मात्मा के प्रति बेहद प्रेम, कितना
बेहद
प्रेम
सर्वस्व
दो, और तीसरा उनको उसके परिणाम फल स्वरूप उनको स्वानुभूति की प्राप्ति हुई, आनंद भाव का नाश कर दिया। तो आखिरी में वो बोले अमरलाल भाई को, मेरे से बात मत करना, मेरे को कुछ सुनाना नहीं। अमरलाल भाई को लगा कुछ मैं सुनाऊ, कृपाणु देव के वचन के नहीं तुमको इतना भी मालूम नहीं, उसको डांट दिया। क्या अमरलाल भाई को डांट पड़ी, तुमको इतना भी मालूम नहीं कि मेरा उपयोग अभी कहीं इधर नहीं उधर उधर नहीं जा सकता, तुमको इतनी बोलेगा मौन रहेगा, हम हमारे उपयोग में हमारे आत्म ध्यान में
आत्मसिद्धि बनाई।
हाँ
ये
आत्मसिद्धि पर उतना उनका वो था कि हमको कोई दूसरा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी उनको सब कुछ आपने दे दिया,
दे दिया
पूरा उपदेश मिल गया आपका आखिरी टाइम पे, वो भी बात नहीं। और कृपाणु देव के प्रति बहुत था लगाव, कृपाणु देव भी विशिक्षण थे, वो नहीं आए, उनको मालूम था कि वो जा रहे हैं, लेकिन उनको समाधि में मरण कराना था, समाधि में देह त्याग कराने की बात थी, तो वो बम्बई चले गए। अम्बालाल भाई को भेजा कि इनकी सेवा की जरूरत पड़ेगी, तुम सेवा में चल जाओ। बहुत विशिक्षण थे ना, हाँ तो भी होता, लेकिन वो उतना रिस्क लेना नहीं चाहते थे उतना रिस्क लेना, वो इनकी भलाई चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि उनका हित हो, आत्म कल्याण हो। बहुत प्रेम था उनको भी, बहुत प्रेम था उनके, सत्संग को चाहते थे उनको भी, और प्रेम कभी एक पक्षी होता ही नहीं, वो वन वे ट्रैफिक नहीं है, उसमें टू वे चलता है, तो उनको भी बहुत था, लेकिन वो साथ में नहीं रहे, और उसका प्रेम था तो उसको धर्म की प्राप्ति करवाई, सब कुछ करवाया क्या नहीं, वो प्रेम के कारण से तो करवाया, पूरी सावधानी रखी है। क्योंकि प्रेम निस्वार्थ होता है, जो स्वार्थ वाला प्रेम है वो प्रेम नहीं है, वो तो राग है, वो सांसारिक राग है, ये निस्वार्थ प्रेम है, स्वार्थ नहीं होता, बदले की कोई बात नहीं होती, मैंने उतना किया तो मुझे उतना होना, वो बात वहाँ नो बार्गेनिंग, तो व्यापार दुकानदारी हो जाती है, प्रेम अमर्यादित होता है, क्योंकि उसमें जीव का स्वभाव है, जीव का स्वभाव स्वभाव मर्यादित नहीं होता, कभी अमर्यादित होता है, तो उसका सिम्टम ही सैक्रिफाइस है। क्या है उसका जो सिम्टम है वो सैक्रिफाइस करना, समर्पण करना, तो इसका चिन्ह है वो, इसका लक्षण है, उसका स्वरूप है वो। कृपाणु देव को भी उतना था, उनको भी आपस में उतना ही था, उनको सत्संग चाहते थे, वो एक बात रहेगी
जी,
छूट गई दूसरे बात में, उनके आपको भी विरह वेदना होगी, मेरे को भी विरह वेदना, आप हम दोनों को विरह की वेदना तो होती है, लेकिन आपको तो वितरकता है ना, तो चल जाता है हमारे तो इतनी वितरकता नहीं है, तो वेदना हमको आखिरी पड़ती है वो बात बता दीजिए क्या कर बैठे। मैं भी जानता हूँ कि आपको विरह वेदना, लेकिन वितरकता है आपके पास, तो आप आपको तो चल जाता है, हमारे को तो चलता ही नहीं है, इसका क्या करे, ऐसी बात चली जाए।